أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طبيب حبيب قلوبنا أبا القاسم محمد صلوات قال الله تعالى في كتابه المجيد وفي الفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان سبھی مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد کی دار ماشاءاللہ سبھی مفکر مدبر اور عظیم لوگ یہاں جمع ہیں پنڈال میں بندہ حقیر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ بزرگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ چند لمحے آپ کو مصروف کروں گا آپ کی توجہ بھی چاہوں گا میرے لیے خوش قسمتی بھی ہے کہ آپ جیسے بزرگوں کی زیارت ہوئی اور آپ جیسے دوستوں کا قریب سے دیدار ہوا واقعاً اب سبھی مجاہد ہیں اصغری مجاہد اور مجاہد لفظ کا معنی جو ہے وہ جہد سے ہے اور جہد کا معنی کوشش کرنا ان جو مسلسل عمل میں ہو کہ انسان مسلسلی عمل میں رہتا ہے تو وہی مجاہد کہلاتا ہے کہ وہی ہر وقت ہما وقت تیار ہوتا ہے اور کوشش میں لگا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی بھی بہتری کرے اور اپنے معاشرے کے لیے بھی بہتری کے اسباب فراہم کرے. اصل میں حیات جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ اے ایمان والو میرا نبی جس چیز کی طرف بلاتا ہے تمہیں اور اللہ تمہیں بلاتا ہے اس میں تمہاری حیات ہے. یعنی اللہ بھی دین کی طرف بلاتا ہے نبی بھی دین کی طرف بلاتا ہے اور حیات زندگی دین میں ہے. اگر ایک انسان دین میں نہیں ہے تو وہ مردہ ہے اس میں حیات نہیں ہے. تو دین جو بلایا جا رہا ہے پیغمبر جو بلا رہے ہیں اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ حیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ اے ایمان والو جس چیز کی طرف تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلا رہے ہیں اس پہ لبیک کہو دعوت کو قبول کرو. لما یحییکم کیوں جب تم دعوت کو قبول کرو گے تو اسی میں تمہاری حیات ہے. یعنی فلسفہ کلام یہ ہوا اس کا مقصد یہ ہوا کہ دین میں حیات ہے جس چیز کی طرف تمہیں نبی بلا رہے ہیں اور اللہ بلا رہے ہیں اس میں تمہاری حیات ہے. حیات کے معنی عرض کرنے سے پہلے میں عرض کروں کہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ دین میں حیات ہے یعنی پوری کائنات اگر زندہ ہے تو وہ دین سے حیات پا رہی ہے دین سے زندہ ہے. تو ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین کو حیات دی. یعنی دین سب کو حیات دے رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام دین کو حیات دے رہا ہے. لفظ حیات کے اوپر تھوڑی سی بات کریں تو میں عرض کروں گا آپ بزرگوں کے سامنے کہ حیات کا معنی حرکت کرنا. حیات کا معنی حرکت کرنا یعنی پتا چلے گا زندہ اور مردہ میں فرق یہیں سے پتا چلے گا کہ اگر اس میں حرکت ہے تو وہ زندہ ہے اور اگر حرکت نہیں ہے تو وہ مردہ ہے. یعنی زندگی اور موت کے درمیان جو فرق ہے وہ حیات کا ہے حرکت کا ہے. तो हयात के माना जब हम हरकत करते हैं कि हयात के माना है हरकत करना, और हरकत न करने के माने मौत है, जिसकी मैं छोटी सी आसान सी एक मसाल आप बुजुर्गों के सामने पेश करूं, दोस्तों के सामने, कि अगर एक मुर्दा को किसी गंदगी पर के ढेर के ऊपर रख दें, किन कचरा है, ढेर है, गंदगी है, उसके ऊपर रख देते हैं, अब उसके ऊपर मक्खियां भी बैठ रही हैं, गंदगी के ढेर पर पड़ा है, तो वो हरकत नहीं कर रहा, अपने आप को महफूज नहीं कर रहा उन मक्खियों से, किन कचरे से, गंदगी से, अपने आप को बचा नहीं रहा, वही पड़ा हुआ है। तो पता चला कि ये जो गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ है, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, ये मुर्दा है, ये अपने आप को गंदगी से दूर नहीं कर रहा। पहुंच रही है ना मेरी बात, कि ये अपने आप को जो गंदगी से नहीं हटा रहा तो मुर्दा है। तो मिसाल देने का मकसद ये कि हम इस चीज को सोचें और समझें कि अगर माशरे के अंदर एक इंसान गुनाहों में पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ है, और अल्लाह तबारक व तआला की मुसलसल नाफरमानियां कर रहा है, और उसमें वो कोई उसके खिलाफ, गंदगी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ, होने वाले हालात और वाकयात के खिलाफ अगर वो जिहाद नहीं करता तो गोया वो जिंदा नहीं, मुर्दा है। यानी जिंदगी की पहली अलामत यह है कि इंसान जुल्म के खिलाफ, ना इंसाफी के खिलाफ उठ खड़ा हो। जहां दीन के खिलाफ काम हो रहा वहां उठ खड़ा हो। सबसे बड़ी जिंदगी की अलामत यह है कि जिंदा है बंदा, वो जिंदा है जो माशरे के अंदर जुल्म के खिलाफ खड़ा है, नेकी अंजाम दे रहा है, तो वो जिंदा है। अगर इसका ये अमल नहीं है कि माशरे के में जुल्म भी हो रहा है, माशरे के अंदर ज्यादतियां भी हो रही हैं, माशरे के अंदर नाइंसाफियां भी हो रही हैं, और वो भी मजा ले रहा हो, देख रहा हो इन चीजों को, और उनके खिलाफ हरकत ना करे, तो मेरे एमा मासूमीन ने भी फरमाया कि ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है। तो इस लिहाज से आप बुजुर्गों दोस्तों का यहां जमा होना इस चीज की एक अलामत है कि आप उस जुल्म के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ मुतफक्किर हैं और तदब्बर कर रहे हैं कि हम अपने माशरे को दीनी कैसे बना सकते हैं, अपने माशरे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं, अपने इस निजाम को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो आप बुजुर्गों और दोस्तों की ये काविश इंतहाई काबिल कद्र है, इंतहाई अजमत के लायक है, इंतहाई बुलंदर है कि आप इस्लाह माशरा के लिए सोच रहे हैं, और जिस चीज से इस्लाह हो सकती है उस नुक्ते तक आप पहुंच चुके हैं। अब आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि अगर माशरे की इस्लाह करना चाहते हो तो सबसे पहले वलायत फकीह की हुकूमत आएगी, तभी जाके इस्लाह माशरा होगा। यानी इस नुक्ते के ऊपर इंसान अगर पहुंच जाए कि इस्लाह किस चीज से होगी, कौन सी ऐसी चीज होगी जो मुसलह हो माशरे के लिए, इलाज क्या है? बीमारी तो हर कोई बताता है कि बीमारी है माशरे में, जुल्म की बीमारी है, नाइंसाफी की बीमारी है, महंगाई की बीमारी है, झूठ की बीमारी है, बेदीनी की हजारों बीमारियां हैं माशरे के अंदर। लेकिन इस माशरे का हल क्या है? दो ही हल है, या तो खुद इमाम जमाना अज्जलल्लाह फरजु शरीफ का जहूर हो जाए, खुद इमाम तशरीफ ले आए और इन बीमारियों का हल करें, माशरे के अंदर इस्लाह पैदा करें, अदल इंसाफ का निजाम कायम करें, या फिर गैबत इमाम में हुकूमत वली फकीह हो, उलमा की हुकूमत हो। खुद लफ्ज वलायत ये हमें बता रहा है, वलायत कमानी हुकूमत है, और भी बहुत सारे मानी किए जाते हैं, लेकिन एक जामे माना जो जिसको समझना चाहिए वो हुकूमत है। माशाल्लाह खुद इस मौजू पर दर्श देने वाले हजरात हैं कि वलायत बमानी हुकूमत, और फकीह का मानी फहम से है, समझने से, यानी समझना खाली समझना नहीं, किसी चीज को दकीक समझना, उसके आखिरी बुनियादों तक जाकर समझना। फकीह का मानी यह है कि फहम यानी समझना, और फकीह उसको कहा गया जो आहकाम दीन को बुनियादों तक समझता हो, उसकी तह तक जानता हो, उन मसाइल को दर करता हो, उनको फहम फरासत के साथ जानता हो, तो उसको कहा गया फकीह। तो गोया जो लफ्ज वलायत फकीह है, इसका मानी यह है किया जा रहा है कि भाई हम ऐसे शख्स की हुकूमत चाहते हैं जो आलम हो, यानी जाहिल की हुकूमत ना हो, साहिबान इल्म की हुकूमत, आलम की हुकूमत। तो गोया वली फकीह की हुकूमत यानी दीन को समझने वाले की हुकूमत, अहकाम दीन को बुनियादी तहों तक जानने वाले की हुकूमत, कि एक ऐसे निजाम की हुकूमत कि जिसमें अदल ही अदल हो, जिसमें इंसाफ ही इंसाफ हो, जिसमें अमल ही अमल हो, तो ऐसा एक निजाम चाहते हैं वली फकीह की हुकूमत, यानी ऐसा निजाम जो उलमा की हुकूमत के तहत हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद निजाम। यानी इंतहाई इख्तसार के साथ मैं अर्ज करूं कि जो आए करीमा तलावत करने का शर्फ हासिल किया, वा तआवनु अलल बिर व तक्वा वला तआवनु अलल इस्म वल उद्वान, बड़ी मारूफ आयत है और इसका एक बहुत बड़ा पैगाम भी है जो हमें यकीनन सभी माशाल्लाह समझ रहे हैं इस बात को और मतवज्जो भी होना चाहिए। जरूरत है, तंजीम है इसी चीज से, तंजीम नज्म से है, और तंजीम का मानी यह है कि हम किसी एक मकसद को हासिल करने के लिए बहुत सारे अफराद एक जगह जमा हो जाएं जिनका मकसद एक होता है, तो वो फिर तआवुन हो जाता है एक दूसरे का, ताकि हदफ को मकसद को जल्दी पा ले। इसलिए यहां जमा हुए हैं कि भी हम अपने अहदाफ जो हैं, हमारा जो बेहतरीन से बेहतरीन हदफ है कि फिक्रे मोहम्मद आले मोहम्मद को आम करना, माशरे की इसलाह करना, निजाम वलायत फकीह को लेकर आना, यानी असल हदफ तो यही है, हमारा मकसद यही है कि वलायत जो हो, हुकूमत जो वो इमाम की हो, हमारे बदन पर भी हो, हमारे घर पर भी हो, हमारे माशरे पर भी हो, हमारे बच्चे बच्चे पर वलायत की जो वलायत हो, जो हुकूमत हो, वो उलमा की हो। तो इसके लिए तआवुन की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी इतनी ज्यादा जरूरत है तआवुन की कि अगर आप इसको थोड़ा दकीक नजर से देखेंगे तो देखें कोई भी अमल जो है बगैर तआवुन के नहीं हो सकता। अब देखिए कि आप लोगों ने, दोस्तों ने इतना बड़ा पंडाल सजाया, तो एक फर्द ने थोड़ा सजाया, कितने हाथ मिले हैं इसमें, कितने अफराद ने मिलकर यह काम किया है, कि आप खुद इस चीज को महसूस कर रहे होंगे कि इतने दिनों से इतने बड़े प्रोग्राम का अरेंजमेंट करना, रातों को जागना, दूर दराज के सफर करना, कितना मुश्किल है। यानी अगर एक फर्द ने करना होता तो कितना टाइम लगता, नहीं कर पाता, नामुमकिन था उसके लिए, यानी कि मुमकिन था, नामुमकिन कहेंगे इस चीज को। तो जब तआवुन हुआ आपस में तो एक बहुत बड़ा पिंडाल सज गया, सारे इंतजाम हो गए, सब चीजें अपनी अपनी जगह पर काम कर रही एक दूसरे के से तआवुन के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि तआवुन करो एक दूसरे के साथ, जरूर करो, लेकिन तआवुन करो नेकी के कामों में, भले कामों में, जो अच्छा काम है ना, कोई भी कर रहा है, किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, किसी भी सिस्टम और निजाम को फॉलो करने वाला है, लेकिन अच्छा काम कर रहा है, तो एक मोमन को चाहिए कि उसके साथ तआवुन करे। चाहे वो यहूदी हो ईसाई हो, मैं तो इस अंदाज में भी बयान किया जा सकता है इसको कि किसी भी मकतब फिक्र से ताल्लुक रखता हूं। जब वो एक अच्छा काम कर रहा है, माशरे के लिए भला काम कर रहा है, दीन के लिए भला काम कर रहा है, नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, खवातीन के लिए, कोई भी एक अच्छा काम हो रहा है, जब आप दर कर लें कि यह माशरे की इसलाह का काम है, तो उसमें आप उसके साथ तआवन करें, मावन बन जाए, उसके मददगार बन जाए, तो यह सबसे अजीम तरीन अमल है कि इंसान जो है इस चीज को जान ले कि मुझे अच्छाई के साथ तआवन करना है हमेशा, जहां भी अच्छाई देखे वहां तआवन करें। वतआवनु अलल बिर्र वतक्वा, यानी तआवन करो, मावन बनो, मददगार बनो एक दूसरे के, जब परहेजगारी के, तकवा के कामों में, अच्छे कामों में एक दूसरे के मददगार बन जाओ। जब मददगार बन जाएंगे तो यकीन कीजिए माशरे के अंदर से इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, सब इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी बात हर अक्लमंद को अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी करे, किसी की तरफ से भी की जाए अच्छी बात है। फिर दूसरा जुमला जो इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, बोला था आमनु अलल इस्म वल उद्वान, इस्म कहते हैं गुनाह को, और गुनाह में बुराई में एक दूसरे के साथ तआवन ना करो, जहां देखो गलत हो रहा है सगा भाई क्यों ना हो, बाप ही क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो, जितना भी अजीज है फौरन उससे अलग हो जाओ, बोला तआवन, और तआवन ना करो, कोई मदद ना करो, इसमें वल उद्वान, कि जो इंसान गुनाह फैला रहा हो उसके साथ कतअन तआवन ना करो, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही वो अजीज क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, उसके साथ तआवन नहीं करना, क्यों? इसलिए कि अगर गुनाह फैलाने में मदद करेंगे तो फिर वो एक गुनाह नहीं होगा। जो इंसान गुनाह की बुनियाद रखता है, जब तक दुनिया में वो गुनाह होता रहेगा उस बुनियाद रखने वाले का हिस्सा उसमें शामिल रहेगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर पहला कत्ल जिस शख्स ने किया, क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उनमें उसका हिस्सा मौजूद है। यानी जो बुराई फैलाता है, जैसे ये फिकी मसला भी है थोड़ा सा, ये वीडियो सेंटर जो चलाते हैं लोग जिसमें फिल्में वगैरह रखी जाती हैं, कहां कारोबार हराम है, जायज नहीं है ये कारोबार, क्यों? इसलिए कि एक बुराई को फैला रहा है। शराब हमल करना, एक बंदे की टैक्सी है, टैक्सी चलाता है, वहां एक शख्स आ जाता है, वो उस टैक्सी में शराब रखता है ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। अब ड्राइवर को पता है कि भाई ये लेके जा रहा है तो हराम है उसके लिए यहां जाना, उसकी जो मजदूरी किराया मिलेगा उसका खाना हराम है, वो रिज़्क़ हराम हो। यानी इस चीज में भी इस हद तक तआवन नहीं करना बुराई में, चाहे उसमें इंसान का अपना ही फायदा हो, फिर भी कतअन तआवन ना करे। तआवन करने से जो मसाइल पैदा होंगे, सबसे पहला मसला तो यह पैदा होगा कि कितने ही लोग उस बुराई में लग जाएंगे, कि बुराई एक माशरे में आ गई तो अब मुतासर होंगे लोग उससे, वो फैलेगी बुराई जो है। दूसरा मसला यह है कि उसने अल्लाह की नाफरमानी की, माशरा तबाह किया, अपनी रोजी हराम की, और माशरे के अंदर एक ऐसा फर्द बना कि कल अगर वो दुनिया से जा रहा है तो कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा इंसान था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया ना, असल में लग रहा है थकावट ज्यादा है, है ना, इतने थक के नहीं सुने,
पर मोहम्मद आले मोहम्मद सलवात
आला मोहम्मद। हमारे एक शायर थे, वो कहा करते थे कि सलवात जो है ना कर्ज समझ कर नहीं, खुम समझ कर ही बुलंद आवाज में पढ़ा करें। یعنی مولا کائنات کا یہ عظیم جملہ کہ مولا فرماتے زندہ رہو تو لوگ تجھ سے ملنے کے مشتاق ہوں، مر جاؤ تو لوگ تجھ پر روئیں۔ یعنی ایک بہترین کلمے میں، ایک جملے میں میرے مولا نے کتنا عظیم فلسفہ زندگی بیان کر دیا کہ زندہ رہو تو لوگ تجھ سے ملنے کے مشتاق ہوں، ان کا دل چاہے کس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر اس سے کچہری کر کے آئیں، نہیں آؤ ملو اس سے تو وہ پریشان ہو کہ بھی میرا ایک اچھا دوست جو ہے وہ مجھے نہیں ملنا۔ اتنا زیادہ زندگی ایسی گزارو کہ لوگ تجھ سے ملنے کے مشتاق ہو، مر جاؤ تو لوگ تجھ پر روئیں، کہیں کہ آج اچھا انسان چلا گیا ہے۔ ایک مشہور مثال ہے تاریخ کی، مصر میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب امام راحل امام خمینی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو یہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا گیا کہ مصر میں ایک جیل میں کچھ قیدی تھے، وہ رونے لگے، خبر پہنچی، انہوں نے خبر سنی کہ امام خمینی جو ایران میں تھے وہ وفات پا گئے ہیں، رحلت فرما گئے، رونے لگے۔ جیلر آیا ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیا ہم نے سنا ہے کہ خمینی جو ایران کے تھے وہ وفات پا گئے، رحلت کر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق، وہ شیعہ تھا اور تم سنت الجماعت ہو، سنی مذہب ہو، وہ ایران کا رہنے والا تھا تم مصر کے رہنے والے ہو، نہ تمہارا عقیدہ ایک ہے، نہ تمہاری نسل ایک ہے، نہ تمہارا ملک ایک ہے، تمہارا تعلق کیا اس سے کہ تم رو رہے ہو؟ تو اس قیدی نے کہا کہ میرا بہت بڑا تعلق تھا ان سے۔ کہا کیا تعلق تھا تو تم رو رہے؟ کہا واحد انسان تھا جس نے مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائی ہے، تو جہاں جہاں تک اس کی آواز جائے گی مظلوموں کو حوصلہ ملے گا، تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے والا آج چلا گیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عمل ہے انسان کا کہ مولا فرما رہے زندہ رہو تو لوگ تجھ سے ملنے کے مشتاق ہو، یعنی اچھی بات اگر آپ جہاں بیٹھ کر بھی کریں گے یقیناً وہ پہنچے گی۔ بس یہ آخری بات آپ کی زحمت کو تمام کریں کہ دو آیتیں ہیں قرآن کریم میں جن کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تفسیر موضوعی میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ان کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، اچانک یہ ذہن میں بات آ گئی تو میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک پیغام میرے تک بھی پہنچے، آپ دوستوں تک بھی پہنچے۔ اس میں کہتے ہیں کہ دو آیات قرآنی ہیں، ایک کا معنی یہ ہے کہ انسان جتنی بھی چھپ کے نیکی کرتا ہے، جتنی بھی چھپ کے کرے، اللہ جب چاہتا ہے اس کی نیکی ظاہر کر دیتا ہے۔ بالخصوص تنظیمی دوستوں کو اس پر سوچنا چاہیے کہ بہت سارے دوست اپنا کام کیش کرواتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اچھی بات ہے کیا، بتانا چاہیے، لیکن نظریہ یہ نہ ہو کہ بھی میں نے کیا، نظریہ یہ ہو کہ میں نے کیا، اب دوسروں کو بھی تشویق ہو، تحریک ملے کہ وہ بھی ایسا کرے۔ یعنی جتنی بھی چھپ کر انسان نیکی کرے گا اللہ جب چاہے گا اس کی نیکی کو ظاہر کر دے گا، اور جب وہ اللہ کی طرف سے نیکی ظاہر ہوگی وہ دنیا میں قائم رہے گی، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان جتنا چھپ کر برائی کرے گا، جتنی بھی چھپ کر برائی کرے، جب اللہ چاہے گا اس کو ظاہر کر دے گا، پتہ چل جائے گا اس کا کہ یہ کیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ بے نیکی کرو تو چھپ کر کرو، اللہ چاہے گا ظاہر کر دے گا، अगर छुप कर बुराई कर रहे हैं कि पता नहीं किसी को चलेगा, तो अल्लाह जब जाएगा वो बुराई भी जाहिर हो जाएगी। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, माशाल्लाह इंतहाई पुरमग़्ज़ और बेहतरीन प्रोग्राम है, फिक्री प्रोग्राम है। आप सभी बुजुर्ग वारे हैं, दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। यकीनन हम अपनी और अपने माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं और नज़्म के लिए एक प्लेटफार्म चाहिए, जो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसे प्लेटफार्म मिले। बुजुर्गों ने मेहनत की, कोशिश की, आज हमारे लिए ये एक सिस्टम और निज़ाम बना बनाया हमें मिला। तो हमें चाहिए कि हम अपनी भी इस्लाह करें और इस मकसद को लेकर इस प्लेटफार्म के ऊपर जब आगे बढ़ें तो दूसरों को भी इस्लाह करें, ताकि माशरे के अंदर जो है वो वाकयन वली फकीह की हुकूमत हो। अब ज़ाहरी हाकम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर इंसान को चाहिए कि वो सोच ले कि मेरे बदन पर मेरे इमाम की हुकूमत होनी चाहिए। जब फर्दन फर्दन हम ये कोशिश करेंगे कि मेरा कोई अमल ऐसा नहीं हो जो हुकूमत वली फकीह से बाहर हो, तो यकीनन हमारा ये असर दूसरे तक भी पहुंचेगा, तीसरे तक भी पहुंचेगा। जैसे ये हदीस मुबारक है, इन्नल हुसैन मिसबाहुन लिलहुदा, कि मौला हुसैन जो हैं वो हदायत के चिराग हैं। तो एक आलम दीन बयान फरमा रहे थे कि रसूल खुदा ने ये नहीं कहा कि इमाम हुसैन जो है हदायत के बल्ब हैं, लंप हैं, चिराग का। और चिराग का फायदा यह होता है कि गरीब के घर में भी जलता है, अमीरों के घरों में तो लालटेने और क्या क्या होता है, लेकिन चिराग दरगाहों पे भी जलता है, गरीबों के घर में भी जलता है। और चिराग की एक और खासियत यह है कि अगर एक चिराग के साथ दूसरे चिराग को मलाएंगे तो वो भी जल जाएगा। यानी एक चिराग पड़ा हुआ है ना, अब एक बल्ब पड़ा हुआ हो जितना भी पावर का हो, उसके साथ दूसरा बल्ब रख दें तो वो उससे रोशन नहीं होगा, करंट नहीं पकड़ेगा, उससे रोशन नहीं होगा। लेकिन चिराग की ये अजमत है कि जब एक चिराग के साथ दूसरा चिराग रखेंगे तो यकीनन वो जल जाएगा और वो भी उतनी ही रोशनी देगा जितनी पहली दे पहला दे रहा है। तो गोया हदायत का निजाम यही है कि जब हम खुद हदायत हासिल कर लेंगे तो हमारे अंदर से जो चिराग निकलेगा दूसरे को भी हदायत देगा, और इसी तरह कड़ी दर कड़ी एक सिलसिला मिलते मिलते एक मुनज्जम तंजीम बन जाएगी और यकीनन वो कामयाब होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की।